بولا ہے سبھی دیویوں کی ماں بتلاتے ہیں، پرنتو رادا کی ماں کیوں نہیں ہے؟ تو بچپن میں کیا اما نہیں ہوتی؟ جیسے بولا کہ کرشن کا بہت گائن ہے، پرنتو کرشن کے ماں باپ کا اتنا گائن نہیں ہے، کیوں؟ نند بابا اور یشودا کرشن کے ماں باپ نہیں گائے جاتے؟ گائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ پرنتو واستو میں یشودا اور نند بابا تو ان کو جنم داتا باپ نہیں ہے، پالنا کرنے والے ہیں، تو جنم دینے سے بڑا کام ہوتا ہے یا جنم دینے کے بعد پالنا کرنا بڑا کام ہوتا ہے؟ اس لیے پالنا کرنے والے ماں باپ کا گائن ہے، جنم دینے والے ماں باپ کا گائن نہیں ہے۔ ایسے ہی رادا کو جس ماں نے جنم دیا اور جس ماں نے پالا، وہ کون سی ماں ہے؟ आज्ञाकारी है या अवज्ञाकारी मां है? फरमान बरदार मां है या नाफरमान मां है? वफादार मां है या बेवफा मां है? ایماندار ماں ہے یا بے ایمان ماں ہے؟ رادھا کی ماں ایماندار ہے، ہاں آپ نے سپنے میں دیکھا کہ ساکشاتکار میں، نشچے بدھی ہے کہ گھڑی گھڑی انشچے آتا ہے، گھڑی گھڑی انشچے آتا ہے۔ آتما جتنی ہی میلی ہوگی اور جنم جنمانتر میلے کام کرنے والی ہوگی، اتنا ہی اس آتما کو انشچے پیدا ہوتا رہے گا۔ تو رادا کو میلا میں نے گندی، کیا بول رہے تھے؟ ہاں رادا کہو یا پاروتی کہو، بات ایک ہی ہے۔ پاروتی کے ماں کا نام کیا ہے؟ وہ تو پھر بھی پرسدھ ہے، लेकिन पार्वती की मां अथवा राधा की मां गुण एक जैसे हैं। पार्वती की मां का नाम क्या दिखाते हैं शास्त्रों में? मैना। ये काम करो मैना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, मैना। तो नाफरमान हुई, अवज्ञाकारी हुई या फरमान बरदार और आज्ञाकारी हुई? तो ब्राह्मण की दुनिया में, क्योंकि राधा की मां चंद्रवंश की बात है या सूर्यवंश की बात है? चंद्रवंश की बात है। राधा की मां ज्ञान चंद्रमा की नजदीकी होगी या दूर होगी? है? है तो नजदीकी। परंतु दिल से नजदीकी है या दिमाग से नजदीकी है? कौन है पालना करने वाली राधा को? हा? जन्म देने वाली भी। यशोदा राधा की मां नहीं होती है, है? राधा को पालना कर देने वाली भी है, जन्म देने वाली भी है, दोनों है। क्या नाम बताया अभी? मैना। तो उसका गायन होगा, पार्वती की मां के रूप में गायन है, लेकिन राधा के रूप में, मां के रूप में कोई गायन नहीं है। कालिका की कोई सवारी दिखाते हैं? सियार दिखाते हैं। सियाल क्या करता है, क्या आवाज करता है? हुआ हुआ हुआ। माना सब कुछ हुआ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हुआ। जैसे माताएं होती हैं तो शिकायत करती हैं, हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, हमारे लिए वो काम नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। सबके लिए करते हो, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। कलयुग में ज्यादातर शिकायत रहती है, और गौरी माँ सतयुग में होती है या कलयुग में होती है? सतयुग में होती है गौरी माँ, और कलयुग में होती है काली माँ। तो काली माँ जिसके ऊपर सवारी करती है उस सवारी का नाम दिया है क्या? श्याल। उसको व्रक भी कहा जाता है। व्रक सड़ा सड़ाया मांस खा जाता है और बहुत खाता है। क्या मांस माने? देह अभिमान। ये कोई जरूरी नहीं कि शेर की तरह उसे ताजा मांस ही चाहिए। शेर दूसरे का किया हुआ शिकार खाता है, बासी मांस खाता है या ताजा खाता है? श्याल कलयुगी है या सतयुगी है? वो कलयुगी है। सड़ा हुआ मांस किसे कहा जाता है बेहद में, और ताजा मांस किसे कहा जाता है? जो अभी विचारिणी होती है वो है ताजा मांस, और जो विचारिणी होती है वो है सड़ा हुआ मांस। विचारिणी में बदबू भी बहुत आती है। सड़े हुए मांस में बदबू आती है कि नहीं? आती है। तो श्याल सड़ा हुआ मांस भी खा लेता है, और थोड़े से नहीं, भूख शांति होती है। क्या? बहुत चाहिए। नाम दिया जाता है ब्रको उदर है। कैसा उदर? भेड़िए की तरह इसका पेट है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, पेट भरता ही नहीं। तो ऐसों पर सवारी करती है कौन? काली माँ। परछियां बाद में, पहले कुछ ओरली जो पूछते हैं सो तो पूछ लो।
बाबा मुरली में आया था लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी।
यशोदा कौन माँ
है?
यशोदा कौन माँ?
यशोदा की कौन माँ? यशोदा कौन माँ? माना यशोदा का पार्ट कौन है? है जो ज्यादा पालना अच्छी करे सो यशोदा। यश देने वाली को क्या कहते हैं? यशोदा। अरे शास्त्र में जो भी शब्द हैं वो अर्थ सहित हैं या निरर्थक हैं? जैसा काम वैसे नाम है। तो नाम ही है यशोदा। क्या दा? यश दिया, अपयश नहीं दिया, एक शब्द भी ग्लानी का नहीं दिया। क्या दिया? कीर्ति दी, अपकीर्ति नहीं दी। यश दिया, अपयश नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई संकल्प मात्र भी नहीं चलाया। असली माँ जो होती है वो अपने बच्चे का अपयश चाहती है क्या? कभी नहीं चाहते। तो नाम है यशोदा। जो भी हो यश देगी अपयश नहीं देगी। और
लीवर घड़ी और सिलेंडर
घड़ी यहाँ क्या होता है? लीवर होता है, क्या करता है? है
वो तो हर्ट करता है ना बाबा।
है
लीवर तो नहीं करता।
ये हार्ट की बात है जो ऊपर नीचे होता है, लेकिन लीवर क्या करता है?
लीवर तो डाइजेस्ट में काम आता है।
डाइजेस्ट में काम आता है ना। तो ये भी ये घड़ी है, लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी है। बिल्कुल
सिलेंडर घड़ी एक्यूरेट चलती
है। एक्यूरेट चलेगा जो सिलेंडर होगा, एक्यूरेट नहीं चलेगा। मन को, बुद्धि को, तन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंध को, सब कुछ अर्पण कर दिया। जैसे बाबा चलाए वैसे चले तो एक्यूरेट चलेगा।
लीवर को चाबी देना पड़ता है
कि जितनी चाबी दोगे उतना चलेगा। और
महाभारत महाभारत
हाँ, युद्ध का जब नाम लिया जाता है तो उसमें प्रसिद्धि है। अमेरिका का युद्ध नहीं, चीन का युद्ध नहीं, अफगानिस्तान का युद्ध नहीं, इराक का युद्ध नहीं। कौन सा युद्ध महायुद्ध है? महाभारी महाभारत युद्ध है। उसका नाम भारत क्यों है? भा माने रोशनी ज्ञान की, और रत माने लगा रहने वाला। जिसका जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो असत्य होगा या सत्य होगा? ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, अज्ञान को असत्य कहा जाता है। रावण है अज्ञान और राम है ज्ञान। ये बहुत बड़ा युद्ध है। भारत के जो भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों में इसी महाभारी महाभारत युद्ध का वर्णन है। ऐसे नहीं कि महाभारत युद्ध में ही महाभारत का गायन है, युद्ध का वर्णन है। जो देवासुर संग्राम है उसमें भी यही वर्णन है, इसी समय का वर्णन है। ज्ञान और अज्ञान का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। देह के मनन चिंतन मंथन में जो लगे रहते हैं वो अज्ञानी है, आत्मा के मनन चिंतन मंथन और पोषण में जो लगे रहते हैं वो ज्ञानी है। दोनों में ऊंच कौन है? लेकिन दुनिया में ज्ञान का पोषण करने वाले ज्यादा हैं या पांच तत्वों रूपी अज्ञान का पोषण करने वाले ज्यादा हैं? तो बहुमत किसका है? तो ये युद्ध हो जाता है। पांच पांडव एक तरफ और सौ कौरव एक तरफ। और उनके सब फॉलोअर्स। और जीतता कौन है? पांच पांडव जीतते हैं। माने सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। ये बड़ा लंबा युद्ध है। ये द्वापर के आदि से ही चला आता है, परंतु महाभारत की किताब में 18 दिन का दिखाया है। तो तीव्र युद्ध भी कुछ होता होगा। तो जो तीव्र युद्ध होता है उसकी यादगार बनी हुई है। और 18 महारथी होते हैं। महारथियों की मृत्यु का टाइम भी तो अलग अलग है। एक है अलग अलग है। 18 का देखो कितना महत्व है। 18 पुराण ही पुराण क्यों? गीता के 18 अध्याय। अरे 18 ही अध्याय क्यों? 18 महारथी। संगम युग में भी 18 का बहुत महत्व है। और
बाबा मोर धाव जो तामर ध्वज में
है, 18
महारथी।
महारथी कौन है? वो गीता में देखो लिखे हुए हैं सब। गीता में सारे नाम लिखे हुए हैं। ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की क्या जरूरत? मोर ध्वज तामर ध्वज की कथा तो शास्त्रों में लिखी हुई है। वो कथा जानने की जरूरत लंबी चौड़ी नहीं है। यहाँ अर्थ है मोर ध्वज। ध्वज कौन सा है? अरे कौन ध्वज माने क्या है? झंडा। कई का झंडा? मोर का झंडा, प्योरिटी का झंडा है। कौन से युग में इम्प्योरिटी शुरू होती है और कौन से युग में प्योरिटी शुरू होती है? प्योरिटी होती है कृष्ण के राज्य से। इम्प्योरिटी होती है द्वापर से। उसे ताम्र युग कहा जाता है। तांबे जैसा युग है। कामी क्रोधियों की दुनिया शुरू होती है। उनमें जो अव्वल नंबर है उसका नाम दे दिया ताम्र ध्वज।
मीठा फल
शबरी के फल, शबरी के मीठा फल जो प्यार से दिया जाए वो मीठा, या जो हिकारत से दिया जाए वो मीठा, जो प्यार से दिया जाए वो ही मीठा। अरे झूठा तो है लेकिन प्यार से दिया है या हिकारत से दिया है? कोई के पास झूठा तो नहीं है, पका हुआ ताजा फल है। लेकिन बेइज्जती से दे रहा है तो वो मीठा फल कहेंगे नहीं कहेंगे। हाँ जी
जन्म देते हैं एक पालना करते हैं तो देवकी से जन्म लेते हैं जगदम्बा तो बाबा ने बोला देवकी अभी जेल में
जो जगदम्बा है वो सदाकाल जेल में है ब्राह्मणों की दुनिया में या कभी जेल से बाहर भी है और अंदर भी है। तो बाहर भी है अंदर भी है वो तो सारे जगत की अम्बा है। अरे जेल की दुनिया द्वापर कलयुग है या सतयुग त्रेता है और जगदम्बा तो देवताओं की भी अम्बा है और असुरों की भी अम्बा है। वो तो सिर्फ है असुरों की ही अम्बा है। कौन जिसका नाम तो दे दिया है देवकी लेकिन रहती जेल में है उसके पूर्वजन्म के संस्कार होंगे तब जेल में रहेगी या बिना कुछ संस्कारों के जेल में रहेगी। पूर्वजन्म के ऐसे संस्कार हैं कि अपने पेट से पैदा हुए किए हुए बच्चे का मुंह भी नहीं देखती और पालना भी नहीं कर सकती। ओ देवकी जो विकारों की जेल में ही रहती है कांटों के जंगल में ही रहती है वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है। कौन है जो एडवांस के आदि से ही कांटों के जंगल में चली जाती है और कांटों के जंगल में ही फलती फूलती है अभी भी कांटों के जंगल में है। कौन है? अरे यहाँ माता की बात हो रही है। हाँ काली तुलसी कहाँ फलती फूलती है? कांटों के जंगल में ही फलती फूलती है। जैसे कि स्वतंत्र वातावरण में रहना उसे पसंद ही नहीं विकारों की जेल में ही रहना है और विकार है ही कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी वो ही उसके आसपास घूमते हैं।
तो बाबा संगम में जो लक्ष्मी होता है ना संगम में लक्ष्मी उसी तो पैदा होता है ना कृष्ण का संगम में जो लक्ष्मी
है
तो पैदा होता है ना कृष्ण का
ऐसा ही कृष्ण का क्या होता है
कृष्ण का जन्म होता है ना 2036 में संगम में जो लक्ष्मी होता
है
तो उससे तो पैदा होता है ना उसके जसदा कहेंगे।
लक्ष्मी जो है वो जन्म देने वाली है पालना करने वाली है या बुद्ध रूपी पांव को दबाने वाली बुद्धि को आथत देने वाली पत्नी है क्या है? आथत देने वाली पत्नी है मां नहीं है उसका पार्ट। और
बाबा
हाँ
ब्रह्मा को जो चार पुत्र है जो चार धर्मों का मुख्य बीज तो ब्रह्मा कौन हुआ जो रामबाण तो देवी देवता धर्मों का मुख्य बीज हो गया तो
पूर्ण
ब्रह्मा से पैदा हुआ चार
यज्ञ के आदि में कितने ब्रह्मा हुए यज्ञ के आदि में कौन कौन आत्माएं थी? जगदम्बा, जगत पिता, दादा लेख राज ब्रह्मा, ओमरादे और छोटी माँ, पांच हो गए। पांच ब्रह्मा के मुख में से एक है प्रजापिता ब्रह्मा, जो गाली देने लग पड़ता है जब तमो प्रधान होता है तो। इसको भगवान को भी गाली देता है तो उसका मुख क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। मुख काट दिया जाए तो देवान और आत्मा अलग अलग हो जाएगी या जुड़ी रहेगी? तो अलग अलग होना अच्छा है या खराब है? आत्मा अलग हो गई, देह तो व्यर्थ की चीज है, खत्म हो जाती है, विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा पांच हैं, पंचानन कहा जाता है, आनन माने मुख। चार ब्रह्मा चतुरानन कहा जाता है। वो चार ब्रह्मा की पूजा नहीं है ब्रह्मा के रूप में, मंदिर नहीं होते, मूर्ति नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा अधूरे का नाम है। और जो आत्मा अलग हो गई वो संपूर्ण है, उसका गायन होता है। तो जो पांच ब्रह्मा हैं वो यज्ञ के आदि में ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समाधान हुआ है? और
त्रिमूर्ति सूत्रों में एक बात समझते नहीं, इसीलिए पढ़ते हैं तो कहते हैं मेरे ऐसे अलौकिक जन्मों के पश्चात उस मनुष्य को आदित्य ब्रह्मा या आदम कहा जाता है, उसके मुख कमल द्वारा मैं पुनः प्राय लुप्त गीता ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। इस ज्ञान और योग द्वारा ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली सरस्वती भविष्य सतयुग की सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी ब्रैकेट में स्वयंवर पूर्व स्वयंवर पूर्व श्री कृष्ण और श्री राधे बहुत पालते हैं। तो मेरा प्रश्न है, इस सरस्वती भविष्य सतयुगी सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, तो सरस्वती के ऊपर मेरा प्रश्न है, सरस्वती के किसके साथ है ये सरस्वती कौन है?
ओम राधे सरस्वती ही तो सतयुग में राधा बनेगी, कोई दूसरी बनेगी क्या? स्वयंवर के पूर्व जब तक उनका स्वयंवरण न हो तब तक राधा है या कृष्ण है। हाँ,
तो यहाँ पर लिखा है जो सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी सत्ययुगी बोला, तो भविष्य भविष्य सत्ययुगी।
हाँ, तो भविष्य तो है ही, सत्ययुग अभी शुरू हुआ या नहीं हुआ? संगम में ही शुरू होगा या सत्ययुग सत्ययुग में ही शुरू होगा? संगम में ही शुरू होगा।
सरस्वती ओम राधे की,
हाँ जी, जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है ऐसे सरस्वती प्रवेश नहीं कर सकती। छोटी माँ है तो छोटी माँ में प्रवेश करेगी। यहाँ संगम युग में बेहद का पार्ट है और सतयुग में देह का हद का पार्ट है। और
पांच ब्रह्मा आदि में पुस्तक हो जाती है। पांच ब्रह्मा आदि में पुस्तक हो जाती है।
नहीं नहीं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं
आदि में।
ये तो एडवांस ज्ञान में आने के बाद पता चला।
पांच ब्रह्मा कौन कौन?
अभी तो बता दिए।
राम वाली छोड़
ठीक है।
गीता माता
लिख ओम राधे भूल गए। छोटी माँ भूल गए।
तो नहीं है बाबा बोलते हैं। छोटी माँ में ये तो भूख नहीं है।
तो आगे हो जाएगा। विष्णु का पाठ पहले होता है या बाद में होता है?
तो
है
में आते हैं।
हैं
मतलब प्योरिटी कैसे सुकुश लाएंगे?
क्या
सुकुशोर कांटे में प्रवेश करता है?
जो समझिए भाई,
सुकुशोर कांटे में प्रवेश करता है।
पति कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ।
यहाँ पति तो कामी कांटे की बात नहीं है। यहाँ बात है कि प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली आत्मा कौन। प्रैक्टिकल पार्ट विष्णु का है, ब्रह्मा का है या शंकर का है? प्रैक्टिकल प्योरिटी के द्वारा होता है। तो कौन करता है और कौन कराता है? कौन करता है?
छोटी माँ।
छोटी माँ वाली आत्मा करती है। तो 63 जन्म में पीछे क्यों नहीं कर लिया प्रैक्टिकल पार्ट प्योरिटी का, जो संसार का कल्याण हो जाता है? ब्रह्मा की आत्मा में ही अगर सहन शक्ति भरी है, ब्रह्मा वाली आत्मा ही सहनशील है, तो 63 जन्मों में सहनशील बन के क्यों नहीं दिखा दिया? सारी दुनिया को बांध लेती, सारे चंद्रवंशियों को बांध लेती। ये सहन शक्ति का पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल में किसने बजाया? शिव ने बजाया। हम बच्चे कुछ भी नहीं करने लायक हैं, हम तो तमो प्रधान हैं। करण करावन हार कौन है? बाबा है। और
बाबा
हाँ,
रजरप्पा माँ किसको कहा जाता है?
रजरप्पा
किसको कहा जाता है? रजरप्पा
माँ।
रजरप्पा
क्या
है? रजरप्पा माँ।
रजरप्पा
माँ किसको कहा?
क्या रजरप्पा? अयप्पा।
ओ माता रोज मुरली सुनती तो है नहीं, फिर वही बातें लेकर के सभा में माथा मारती, यही बात हमको समझाओ। अयप्पा जो नाम रखा है वो नाम ही साबित करता है। जिनके काले कपड़े होते हैं या सफेद कपड़े होते हैं? काले कपड़े होते हैं। तो काले कपड़े वाले काले काम करने वाले होंगे या व्हाइट काम करने वाले होंगे? जन्म जन्मांतर जिन्होंने बहुत काले काम किए हैं, तो संगम युग में आकर के वो शूटिंग काले कामों की ही करेंगे या व्हाइट वर्क करेंगे? काले काम ही करेंगे। और जन्मों में तो एक गुना पाप चढ़ता है और संगम युग में 100 गुना पाप चढ़ता है, क्योंकि अंजाम कर लेते हैं। आगे जन्म में तो खून से भी लिख करके देते थे, इस जन्म में तो स्टाम्प पेपर पर लिख लिख करके देते हैं, अंजाम करते हैं ये हमारा बाप है, और दुनिया को भी बखान करते हैं हमारा बाप आया हुआ, और खुद ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दुनिया वालों के दांतों में उंगली दब जाती है। अरे ये कैसे भगवान के बच्चे, तो ऐसे ऐसे सौ गुना पाप का बोझ चढ़ाने वाले कम पाप के भागीदार दंड पाने वाले बनेंगे या ज्यादा सोटे खाने वाले बनेंगे? ज्यादा सोटे खाने वाले बनते हैं, तो जब ज्यादा सोटे लगते हैं तो जरूर मुंह से निकलेगा अय्यप्पा। तो वो आखिरी टाइम की उनको वो बात याद है, वो घड़ी उनको भूलती नहीं है। 63 जन्मों में इतनी सजाएं नहीं मिलती कड़ी जितनी सजाएं संगम युग के अंत में धर्मराज बाप के द्वारा मिलती। वो धर्मराज बाप ही उनको बार बार याद आता है और नाम दिया है अय्यप्पा।
बाबा असली में उनका नाम है हरिहर पुत्र
है,
हरिहर पुत्र
है
उसका नाम है, लेकिन
हरिहर पुत्र तो गलत नाम क्या है, हरि नाम कृष्ण का है और हर नाम शंकर का है। वो जगत पिता है, वो जगत की माता है, तो माता और पिता दोनों के पुत्र है, माने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। वो है भक्ति मार्ग के हरिहर पुत्र और ये है ज्ञान मार्ग के हरिहर पुत्र। और
गुरु कावली की क्या कहानी है,
पहले इनकी कहानी सुन ले। हाँ
1982 जन्म लेती है, 1969 से पहले है, 1969 से पहले कृष्ण वाली आत्मा 82 जन्म लेती है,
69 से पहले
और अपनी 83 है और 36 को 84 लेती है, तो 73 में एक जन्म ज्यादा हुआ।
हाँ अरे वो तो उन्होंने बेसिक नॉलेज की किताब में ही लिख रखा है, मुरली के महावाक्य में ही बोल रखा है कि त्रेता में कोई कोई आत्माएं 13 जन्म भी लेती है। तो जो 13 जन्म लेती हैं वो ही आत्माएं हैं जिनका संगम युग में एक साकार जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कम हो जाता है। जो एडवांस के बच्चे हैं उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म देखने में आवेगा या सूक्ष्म शरीर होगा देखने में आवेगा, और उन आत्माओं का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो करेंगी हनुमान के मिसल, लेकिन वो शरीर उनका देखने में नहीं आवेगा। तो शरीर भी तो चाहिए, तो वो एक जन्म उनका वहां ऐड हो जाता है त्रेता में, इसलिए वो चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा के वंशी हैं, चंद्रमा की बनाई हुई बताई हुई रीति भीति पर चलने वाले हैं, ज्ञान सूर्य की मुरलियों को उतना ध्यान देने वाले नहीं है। दीवा बुझाई देती है, तुम दीवा बार बार जलाते हो, कौन सा दीवा है, ये आत्मा रूपी दीपक है, तुम बार बार याद करते हो आत्मा रूपी दीपक जगाते हो, और माया दीवा बुझाई देती है। बाबा महीना में एक बार मिनी मधुबन आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे युगल भट्टी किया है परंतु अभी ज्ञान में चलता नहीं, हमको आने देता नहीं, फिर पैसे का भी प्रॉब्लम है क्योंकि युगल कमाई करता नहीं और माता कमाई करती है। और बाबा क्या कहते?
माता को कमाई नहीं करना चाहिए, माता कन्या।
बाबा कहते कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है और माता क्लास तो करती है, करती है या बोलती है लिखती है, लेकिन बाबा की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। तो बाबा का सन्मुख क्लास करती है या विमुख कह आ जाए, माता कहेगी अगर मैं भी कमाई नहीं कमाऊंगी तो परिवार का हाल क्या होगा। क्या ये जो भी परिवार श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं वो अंत तक उनकी पारिवारिक व्यवस्था बनी रहेगी या वो परिवार टूट फूट के छिन्न भिन्न हो जाएंगे? वो तो छिन्न भिन्न होने ही हैं, तो हम श्रीमत की बरखिलाफी क्यों करें? और श्रीमत की बरखिलाफी करने का भी कोई तो कारण होता है। कुछ तो प्राप्ति होती है, प्राप्ति के बगैर कोई काम होता है क्या? वो अल्पकाल की प्राप्ति होती है या सदाकाल की प्राप्ति होती है? अल्पकाल की प्राप्ति होती है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे श्रीमत की बरखिलाफी कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, पैसे की भी प्रॉब्लम है, तो पूछा है क्या मैं बाबा के आने पर क्लास में आ सकती हूं या नहीं आ सकती हूं? मिनी मधुबन में जो संगठन क्लास होता है संडे संडे, उसमें भी मैं नहीं आ सकती और गीता पाठशाला में मैं रेगुलर क्लास करती हूं, क्लास करती हूं लेकिन श्रीमत पर नहीं चल सकती हूं क्योंकि मुझे कुछ खास प्राप्ति होती है। होती है नहीं? अल्पकाल की होती है या सदाकाल की? अल्पकाल की कुछ खास प्राप्ति है। क्या प्राप्ति होती है? क्या प्राप्ति होती है? हैं? खाना पीना,
जीवन भर
हाँ, अल्पकाल का सुख मिलता है, क्षणभंगुर सुख मिलता है, उसके पीछे बाबा के क्लास में आना भी भले बंद हो जाए। उसके लिए पैसा नहीं है। अरे बाबा तो कहते हैं अगर बांधेली माताएं हैं तो जैसे बाबा की क्लास में आ सकती हैं दो महीने में एक बार, तो क्या महीने में एक बार संगठन क्लास अटेंड नहीं कर सकती? कर सकती। उसके लिए बांधेलापन नहीं है बाबा के क्लास में आने के लिए है? बाबा के क्लास में आने के लिए बांधेलापन याद आ जाता है कि मैं बांधेली हूं इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सकती। ये तो बात ठीक नहीं। अगर ब्राह्मण परिवार ही नहीं है तो फिर बाबा साथ देगा है? नहीं देगा। बाबा है तो बाबा का ब्राह्मण परिवार भी है। और दूसरी बात, बांधेली हूं मुरली में बोला ऐसा कौन कहती है? शेरनी शक्तियां कहती हैं या बकरियां भेड़ बकरियां कहती हैं? शेरनी शक्तियां कहती हैं। जो भेड़ बकरी हैं वो कहती हैं बांधेली हूं। नहीं तो लौकिक दुनिया में एक चरित्र बहुत प्रसिद्ध है माताओं का। कौन सा चरित्र? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। अरे त्रिया चरित्र से तो देवताएं भी हार गए, तो ये पति क्या चीज है? लेकिन कोई न कोई बाबा को बहानेबाजी करनी है। सेंटर में बाबा के आने पर साइन करने में बहुत देर होता है, समय ज्यादा लग रहा है। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यही है कि ये भी एक सेवा है। कोई भाई ऐसा निकले जो एंट्री करने के लिए सक्षम हो, भाइयों की एंट्री करे फटाफट, और कोई माता ऐसी निकले पढ़ी लिखी जो माताओं की एंट्री फटाफट करे। नहीं हो सकता क्या? फिर
बाबा बार बार पूरा एड्रेस कितना जरूरी होता है? बार बार पूरा एड्रेस कितना जरूरी होता है? हर बार
टेलीफोन
एड्रेस पूरा एड्रेस लिखा जाता है बार बार?
टेलीफोन तो लिखना इसलिए जरूरी कि आजकल मोबाइल में रोज रोज नंबर बदल जाते हैं।
गांव थाना तो नहीं बदलता बाबा, गांव जिला तो नहीं बदलता।
बाकी
एड्रेस तो बार बार नहीं बदलता।
जो एंट्री कराने वाला है वो इतना जानकार होना चाहिए परिवार का, जो देखे कि ये पुराना है तो बार बार लिखाने से कोई फायदा नहीं,
ये तो ठीक है,
और नया है तो लिखाना लाजमी है। है
बहन को अलग कर दीजिए, भाई को अलग कर दीजिए।
हाँ
माता को अलग कर,
ठीक है, अलग अलग रजिस्टर कर दो, कर दो कर दो। है तो भाइयों में दो भाई निकाल लो, माताओं में दो माताएं ऐसी निकल पड़े, जो अलग अलग एंट्री करे उन्हीं कागजों को कागजों पे करो और उन्हीं कागजों को रजिस्टर में ऐड करते जाओ। सीरियल नंबर मत डालो। बाद में सीरियल नंबर डाल दो। एक और समस्या है पर्सनल। स्थानीय कोई गीता पाठशाला नहीं है, घर में शक्ति भवन, मेरा चार भाई माता होता है, तो क्या भाई लोग क्लास कर सकते हैं? अरे जब घर के ही लोग हैं, परिवार के हैं, तो क्लास क्यों नहीं कर सकते? आस पास का दो एक भाई भी आता है कभी कभी, तो शक्ति भवन कहाँ रहा? वो तो गीता पाठशाला हो गई। इसमें बाधा क्या है? हैं?
गीता पाठशाला मत छीनिए, नहीं तो सब गिर पड़ेंगे।
कौन छीन रहा है?
कभी कभी ऐसे बोलते हैं माता जी, तो माता जी से तो बहस नहीं कर सकता है, बोलते कि गीता पाठशाला कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, आता तो है ही।
ब्रह्मा की हजार भुजाएं गाई हुई हैं, सहयोगी हजार भुजाएं, क्या 16,000 के राज परिवार में से ही होंगी या बाहर की साहूकार प्रजा भी 1,000 भुजा में आएगी? जो बाहर वाले सहयोगी नहीं बन सकते। तो बाहर वाले भी आ सकते हैं। मट्ठी करने के बाद जो विकार में गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं या अनिश्चय बुद्धि होकर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल को समझ करके लौट आते हैं, पश्चाताप करते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं, तो क्या उनका दास दासी का ही पद फिक्स होगा या कोशिश करने से ऊंच पद पा सकते हैं? ऊंच पद पा सकते हैं हाँ, जब छोड़ के गए अनिश्चय बुद्धि बने या यज्ञ में धोखा देके चले गए, उस समय तक शूटिंग हो गई। जिस समय धोखा दिया और जब तक अनिश्चय बुद्धि रहे दास दासी बनने की या प्रजा वर्ग में जाने की, फिर जब दोबारा आ गए, भट्टी कर ली, पश्चाताप कर लिया, माफीनामा भी लिख दिया, अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, सेवा भी करते हैं, अमृत बेला भी करते हैं, तो आगे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना पहले पहले जब ज्ञान में आए थे सतोप्रधान स्टेज में, उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, उतना ऊंच पद नहीं पा सकते। और
संकीर्तन क्या नाम दिया?
नाम
नाम दिया जाता है
नाम नहीं होता है तो राधा कृष्ण ये नाम नहीं है। अरे हल्की भाषा होती है, ज्यादातर कार्रवाई इशारे से होती है, क्योंकि संकल्प सबके मिले हुए हैं, संस्कार सबके मिले हुए हैं। संकल्प और संस्कारों में कोई की आपस में टकराव होती नहीं है, इसलिए वाइब्रेशन से ही, इशारे मात्र से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। हाँ भाषा होगी लेकिन हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी और बहुत थोड़ा बोलेंगे। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो।